नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के धुले में जनसभा को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की नीति भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त कर देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, समकालीन चुनौतियों से निपटने में भारत और आसियान के बीच सहयोग महत्वपूर्ण। सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित मामले में वर्ष 1967 के फैसले को निरस्त किया। मामला नियमित खंडपीठ को सौंपा। बैडमिंटन में इक्सान में भारत के किरण जॉर्ज कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। और क्रिकेट में चार मैचों की श्रृंखला के पहले 2020 मैच में आज डरबन में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर इस महीने की 20 तारीख को मतदान होगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने आज धुले में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र में विकास में जो गति आई है उसे जारी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अगले 5 वर्ष में महाराष्ट्र के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि केवल महायुति गठबंधन सरकार ही राज्य में सुशासन प्रदान कर सकती है।
महायुति के 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र ने विकास के नए रिकॉर्ड बनाए। 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र को उसका गौरव वापस मिला है, विकास का भरोसा वापस मिला है। और इसलिए मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं से आग्रह पूर्वक कहूंगा, आप सबको याद रखना है, भाजपा महायुति आहे।
श्री मोदी बाद में नाशिक में एक चुनावी रैली करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के शिराला में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया।
20 तारीख को समग्र महाराष्ट्र के अंदर मतदान होना है और आप लोगों को वो मतदान में निर्णायक भूमिका लेनी है। केंद्र में भाजपा सरकार है, नीचे महायुति की सरकार बना दीजिए, डबल इंजन की सरकारें महाराष्ट्र को देश का नंबर एक राज्य बनाने का काम करेंगे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में झारखंड के सिमडेगा में चुनावी रैली की।
लड़ाई संविधान को बचाने की है। एक तरफ जो संविधान को बचा रहे हैं, दूसरे तरफ जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग जो आपको आदिवासी कहते हैं, आपका आदर करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो आपको वनवासी कहते हैं और जो भी आपका है वो छीनना चाहते हैं। लड़ाई ये है, युद्ध ये है।
झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के लिए मतदान 13 नवम्बर को और दूसरे चरण के लिए मतदान 20 नवम्बर को होगा। विभिन्न राज्यों में 48 विधानसभा क्षेत्रों और केरल की वायनाड संसदीय सीट तथा महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी प्रचार तेज हो गया है। विधानसभा चुनाव की इस विशेष श्रृंखला में आज प्रस्तुत है महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट की प्रोफाइल।
बारामती ने पिछले 6 दशकों में कई बदलाव देखे हैं, लेकिन इन सब के बीच इस निर्वाचन क्षेत्र में पवार परिवार का दबदबा बरकरार रहा। शरद पवार ने 6 बार बारामती सीट से विजय प्राप्त की। इसके बाद में उनके भतीजे और वर्तमान विधायक अजित पवार ने इस सीट का नेतृत्व किया और बारामती से 7 बार विजयी हुए। एनसीपी के विभाजन के बाद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले लोकसभा चुनाव में बारामती लोकसभा सीट पर विजयी हुई। विधानसभा चुनाव में एनसीपी एसपी ने अजित पवार के खिलाफ उनके भतीजे युगेंद्र पवार को मैदान में उतारा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बारामती के 380,608 मतदाता इनमें से किसे अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनते हैं। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने के नीति भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में सत्य, निष्ठा और अनुशासन को जीवन का आदर्श माना जाता है। राष्ट्रपति नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक बीमारी है और इसे जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई पहल की है। इनमें से कुछ पहलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना, ई मार्केटप्लेस और आर्थिक अपराधी अधिनियम का उदाहरण दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अभियान की सराहना की।
भ्रष्टाचार आर्थिक प्रगति के लिए अवरोध तो है ही, ये समाज में विश्वास को भी कम करता है। इससे लोगों के बीच में बंधुता कम होती है। इसका व्यापक प्रयास देश की एकता और अखंडता पर भी पड़ता है। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिन पर हम देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने का संकल्प लेते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि विश्वास सामाजिक जीवन की नींव है और भ्रष्टाचार न केवल आर्थिक प्रगति में बाधा है बल्कि ये समाज में विश्वास को भी कम करता है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज और कल्याणकारी योजनाओं में जनता का विश्वास शासन के लिए शक्ति का स्रोत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत और आसियान के बीच सहयोग के रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि दोनों देशों की जनसांख्यिकी और उभरती मांगें एक दूसरे की पूरक और वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रमुख वाहक बन सकती हैं। डॉ जयशंकर आज सिंगापुर में आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 8वें गोलमेज सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग समकालीन चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण हो सकता है।
इंडिया एंड आसियान आर मेजर डेमोग्राफीज हुज इमर्जिंग डिमांड्स कैन नॉट ओनली सपोर्ट ईच अदर बट बिकम लार्जर प्रोडक्टिव फोर्सेस इन द इंटरनेशनल इकोनॉमी। आफ्टर ऑल टुगेदर वी अकाउंट फॉर मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन।
डॉक्टर जयशंकर ने भारत और आसियान के साझा क्षेत्रों में राजनीतिक जटिलताओं को स्वीकार करते हुए कहा कि इनका सामूहिक रूप से समाधान करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में म्यांमार की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि निकटवर्ती देशों के हित और दृष्टिकोण हमेशा अलग अलग रहेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने नई कनेक्टिविटी पहल की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, भारत पश्चिम एशिया यूरोप गलियारे और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के संबंध में भारत की प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और आसियान नए क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकियों की पहचान कर रहे हैं जिनमें सहयोग बढ़ाए जाने की संभावनाएं हैं। डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि वे आज हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के महत्व को समझने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
The trilateral highway to the east, the India Middle East Europe Economic Corridor IMEC and the International North South Transport Corridor INSTC are major commitments. Digital and energy connectivity have also been the subject of recent conversations.
ये कार्यक्रम आसियान भारत केंद्र और ISEAS यूसुफ इशाक संस्थान के आसियान अध्ययन केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 4-3 के बहुमत से एस अजीज बाशा बनाम भारत सरकार मामले में 1967 के उस फैसले को आज खारिज कर दिया जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। वर्ष 1967 के फैसले में कहा गया था कि कानून द्वारा स्थापित कोई संस्था अल्पसंख्यक संस्था होने का दावा नहीं कर सकती। शीर्ष अदालत ने आज कहा कि किसी भी संस्था का अल्पसंख्यक दर्जा इसलिए वापस नहीं लिया जा सकता कि उसकी स्थापना वैधानिक व्यवस्था द्वारा की गई थी। पीठ में बहुमत ने माना कि न्यायालय को ये जांच करनी चाहिए कि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और इसके पीछे किसकी सोच थी। यदि ये जांच अल्पसंख्यक समुदाय की ओर इशारा करती है तो संस्था संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकती है। इस तथ्य के निर्धारण के लिए संविधान पीठ ने मामले को नियमित पीठ को सौंप दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
क्रिकेट में आज डरबन के किंग्समीड में चार मैचों की श्रृंखला के पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे जबकि एडन मार्करम दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान होंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच रविवार को गकेबेरा में, तीसरा मैच सेंचुरियन में, जबकि चौथा और आखिरी मैच अगले सप्ताह जोहान्सबर्ग में होगा। इसके अलावा कोरिया बैडमिंटन मास्टर्स टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में भारत के किरण जॉर्ज ने अपनी जगह पक्की कर ली है। क्वार्टर फाइनल में आज सुबह उन्होंने जापान के ताकुमा ओबायाशी को 21-14, 21-16 से हराया। उधर कतर के दोहा में खेले जा रहे IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत के पंकज आडवाणी का मुकाबला अपने ही देश के सौरभ कोठारी से होगा। वहीं शतरंज में भारत के अर्जुन एरिगेसी ने कल चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में एलेक्सी सरना पर तीसरे दौर की शानदार जीत के बाद फिडे विश्व शतरंज रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी में आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 1 UI 384 दर्ज किया गया। बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कुछ हिस्सों में 1 UI 400 को पार कर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। आनंद विहार का 1 UI 414, रोहिणी में 432, अशोक विहार में 415, न्यू मोतीबाग में 421, पंजाबी बाग में 404 और नेहरू नगर का 1 UI 411 दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2-3 दिन तक दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुबह शाम धुंध छाए रहने के आसार हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व आज संपन्न हो गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के 97वें जन्मदिवस पर उन्हें शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी देश के सबसे प्रशंसित राजनेताओं में से हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री आडवाणी को उनकी बुद्धि और समृद्ध अंतर्दृष्टि के लिए हमेशा सम्मान दिया गया है। भारतीय सैन्य विरासत का द्वितीय वार्षिक महोत्सव आज नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। 2 दिन के इस महोत्सव का उद्देश्य वैश्विक और भारतीय विचारकों, निगमों, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उपक्रमों, गैर लाभकारी संस्थाओं और शिक्षाविदों का ध्यान भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, सैन्य इतिहास और विरासत पर केंद्रित करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के धुले में जनसभा को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की नीति भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त कर देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, समकालीन चुनौतियों से निपटने में भारत और आसियान के बीच सहयोग महत्वपूर्ण। सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित मामले में वर्ष 1967 के फैसले को निरस्त किया, मामला नियमित खंडपीठ को सौंपा। बैडमिंटन में इकसान में भारत के किरण जॉर्ज कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।